भक्ति योगं
तृणा भक्त आया। इसके बाद में और दूसरे असुर आए, कृष्ण ने उनका संहार किया। इसमें कुछ शिक्षाएं हैं। क्या शिक्षाएं हैं? दो तरह की शिक्षा। एक शिक्षा अनुकूल रूप में और एक है प्रतिकूल रूप में। जो चीज भक्ति के लिए हानिकारक है उसको प्रतिकूल रूप में त्याग करने की, और जो अनुकूल है उसको ग्रहण करने की। उतना कृष्ण को मारने के लिए आई और उसके लिए चेष्टा की। उसमें माता का वेश धारण किया, छल प्रपंच किया और स्तन से दूध के बदले विष पान कराया कृष्ण को मारने के। इनका एक विचार, और यशोदा मैया और दूसरे गोपियों और गोपों का। कृष्ण के लिए उनकी कितनी ममता है, कितना प्रेम है, उनके लिए कितना अधीर हो जाती हैं। समस्त अखिल चेष्टाएं कृष्ण के लिए और कृष्णार्थे अखिल भोग इत्यादि का त्याग उनके जीवन में देखा जाता है। इष्टे सारस्वती राग परमावश्यता जत भवे तैन्मयी जा भक्ति सा रागात्मिकोदिता। इष्टे सारस्वती राग, अपने इष्ट वस्तु में स्वाभाविक रूप से वर्धमान तैलधारावत अविच्छिन्न गति से बढ़ता हुआ अनुराग, स्वार्थ की ऐसा अनुराग और इष्ट स्वार्थ की राग परमा अविष्टता पे परम आविष्ट यदि हो जाए आवेश, उस समय अपने तन मन शरीर की सूझबूझ न रहे, परमाविष्टता भवे तन्मयी। यहां पर कृष्णमयी, कृष्णमयी तन्मयी भवेत क्या राग, वैसा अनुराग हो तन्मयी राग, उसमें शुद्ध बुद्धि न रहे, ऐसे अनुराग को रागात्मिक कहते हैं। कुछ लोग रूप गोस्वामी को रागात्मिका न लेकर के रागानुगा में ले लेते हैं, यह भूल है। वो रागात्मिक है, यशोदा मैया रागात्मिक है। तीन चीजें हैं, एक साधक, एक बहिर्मुख और एक अत्यंत कृष्ण में अनुरक्त रागात्मिक। प्रत्येक लीलाओं में इसका विचार होना चाहिए। जो ऐसा विचार कर सकता है वो मध्यम अधिकारी है, अन्यथा वो सब ये विचार नहीं कर सकता, कहने पर भी वो नहीं समझ सकता है। वो जो कर रहे हैं वो उसको नहीं समझ सकता है, बड़ा भारी कठिन है। इसलिए इसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। क्या कहा, थोड़ा सा बोल दीजिए तो, नहीं तो एक अपने पास में रखिए तो, नहीं तो ये लोग सामने से बोल लीजिए। निकट में रहते तो अच्छा है, तो बैठो। अब पुतना को लिया जाए, पुतना का है? What he has written, जो कुछ उन्होंने लिखा है वो रागानुगा के लिए लिखा है, ये बात ठीक है, किंतु खुद रागानुगा नहीं है। इस चीज को समझा जाए, उन्होंने रागानुगा भक्तों के लिए, उससे नीचे भी भक्तों के लिए उन्होंने सब कुछ लिखा, किंतु वो रागानुगा नहीं, रागात्मिक खुद है। इसीलिए उनके दो भाव हैं, एक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण। उनका सिद्ध रूप से जो शरीर है उसके अनुसार में हम साधन भजन करेंगे आंतरिक रूप में सिद्ध देह के द्वारा, और ऊपर से करेंगे कैसे, उनके साधक शरीर से, जैसे रूप गोस्वामी इत्यादि के रूप में उन्होंने जो साधन भजन किया, किंतु है वह रागात्मिक जन। अब कृष्ण लीला के ऊपर में हम लोग चलते हैं। पुतना आई, वो कृष्ण को मारने के लिए आई, किंतु कपट व्यवहार किया। उसको उससे मुक्ति मिली या उसको भक्ति मिली, क्यों क्यों मिली? इसलिए उसको अभी बहिर्मुख भी कहिए और साधक भी कह दीजिए, एक तरह से साधक भी उसको कहा जा सकता है। सचमुच में भक्ति का साधक तो नहीं, किंतु मोक्ष कहिए अथवा उस सब के लिए, जैसे वो श्लोक है ना प्रहलाद महाराज जी के, नहीं श्रीमद भागवत दशम स्कंद में, गोपियां तो कृष्ण को परमपति नहीं जानती थी, किंतु उनको साधारण एक जार पुरुष के रूप में वो देखती थी, संसारी, किंतु इतनी ऊंची पदवी कैसे पा गई भक्ति की अंतिम? तब उक्त पुरस्कार पहले कह दिया, यदि द्वेषात, क्या कामात द्वेषात और क्या भयात स्नेहात भक्तरेश्वरे मन संबंधात, क्या भक्त्या वयं विभो, ये दो श्लोक हैं, छ दिखलाया एक में पांच दिखलाया, इन कारणों से यदि आदमी कोई भय से क्रोध से द्वेष से काम से, कितना चार, संबंध से और भक्ति से कृष्ण में आविष्ट हो जाए किसी भी तरह से, तो बाबा की गतिम उनको गति हुई। श्लोक क्या है वो, कामात द्वेषात भयात स्नेहात भक्तरेश्वरे मन संबंधात आवेश तदहम अगम हित्वा, क्या सदगति मिला। बहुत से लोगों ने सदगति, कृष्ण के प्रति यदि स्वाभाविक रूप से किसी को द्वेष हो और देश के द्वारा वो अत्यंत उसमें आसक्त हो जाता है और उसमें आसक्त हो करके उसमें क्या आविष्ट यदि हो जाए कोई तदात्म यदि हो जाए तो उसकी गति हो जाएगी। भय से कृष्ण में कोई अत्यंत आविष्ट हो जाए तो उसके द्वारा भी गति हो जाएगी। यदि किसी को कृष्ण में ऐसा काम उत्पन्न हो जाए जो पुरुषों का स्त्रियों में होता है, स्त्री का पुरुष में होता है, और उसके द्वारा बुरी चीज है, सांसारिक दृष्टि से, किंतु कृष्ण में कोई आविष्ट यदि हो जाए, संबंध कृष्ण के साथ में जैसे पांडव इत्यादियों का था, और संबंध के द्वारा कृष्ण में आविष्ट हो जाए, और भक्ति के द्वारा आविष्ट कोई यदि हो जाए, तो बहुत लोगों की ऐसी गति हुई। द्वेष बुरी बात है, द्वेष से बढ़कर के और कोई दोष नहीं है, किंतु क्या नाम था उसका, द्वेषात शिशुपाल, शिशुपाल को कृष्ण के प्रति द्वेष हुआ। द्वेष अकारण नहीं था, उसका कारण था, इसलिए उसमें स्वाभाविक द्वेष हो करके और एकदम उसमें आविष्ट हो गया। जिसके स्पर्श से या दर्शन से उसके चारों हाथों में से दो हाथ गिर जाएंगे, वो व्यक्ति इसको मारेगा। उसके जन्म से चार हाथ थे और स्वाभाविक रूप से दो थे, स्वाभाविक चतुर्भुज नहीं, दो हाथ कहीं लटके हुए थे, देखने में बुरा लगता था। तो जिसके देखने से ये चारों हाथ में से दो हाथ गिर जाएंगे वो उसको मारेगा। कृष्ण जबकि वो छोटा था, तब कृष्ण आए अपने बुआ जी के पास में और उसको बड़े प्यार के साथ में उसको स्पर्श किया या गोदी लिया होगा, और गोदी लेने के साथ ही उसके दो हाथ गिर गए। गिरते ही उसके मैया ने कहा, माने इनकी बुआ जी ने कहा, बेटा इसको मारना मत, तुम इसको मारेगा किंतु तुम मारना मत। रोने लगी तो अच्छा 100 अपराध इसके हम क्षमा कर देंगे, इसके बाद में यदि होगा तो हम दंड देंगे। अच्छा। अब वो जब बड़ा हुआ तब ये सुना जो हम इसको देखने से हमारे हाथ गिर गए और ये हमारा शत्रु होगा और हमें मारेगा, इसलिए कृष्ण को पहले ही मार दें जिससे कि हमको न मारे, इसलिए उसकी चेष्टा थी, इसलिए स्वाभाविक उसके प्रति द्वेष हो गया। ये साधन नहीं है, तो अभी कृष्ण के प्रति ऐसा उसको द्वेष हुआ। जब कृष्ण पांडवों की सभा में आए रायसूय यज्ञ में और उनको इसने देखा और कृष्ण की पूजा होने लगी, उस समय इसका द्वेष बढ़ गया, स्वाभाविक उद्दीपन भाव जिसके लिए कहते हैं, उद्दीपित उसको हुआ कृष्ण को देख करके। कृष्ण तो शांत मुद्रा में सबके पैर धो रहे थे और पूजा का प्रस्ताव आया तो भीष्म पितामह जी और कृष्ण के और युधिष्ठिर के सबसे छोटे भैया सहदेव, उन लोगों ने प्रस्ताव किया कृष्ण की पूजा होनी चाहिए और सुन करके वो तिल मिला गया, कहे हमारा शत्रु और इसको हुआ एकदम अविष्ट हो गया, अनाप शनाप बकते 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 एकदम अविष्ट हो गया। कृष्ण ने चक्र सुदर्शन उठाया, उसे समाप्त कर दिया। फल क्या हुआ, वो जो अविष्टता थी परमाविष्टता जद भवेत,
तीनों बातें हो गई, स्वाभाविक
स्वाभाविक उसमें द्वेष भाव आया और परम अविष्ट हो गया। ये परम जो अविष्ट हुआ इसलिए उसकी गति सब हो गई और गति होकर के क्या पाया, साइज हो या सारूप्य हो, इसने गति पाई। क्योंकि ये भक्ति तो है नहीं किंतु आविष्ट होने के कारण इसको मिल गया, देशात भयात क्रोधात भी है, क्रोधात देशात भयात भय, कंस भय के मारे कृष्ण की चिंता करते करते इतना आविष्ट हो गया कि जबकि सुना जे ये जन्म ले लिया आठवां गर्भ और वहां से कपड़े नहीं पहने, केशों को सवारा नहीं, सो रहा था एकदम आविष्ट होकर के, वहां से हाथों में तलवार लेकर के क्या पहने हैं, कपड़ा नहीं, क्या क्या है, किस तरह से भी कृष्ण हाथ में तलवार लेकर के आया एकदम और एकदम आविष्ट होकर के अपनी बहन के हाथ से, उसने वो जो लड़की थी उसको खींच लिया, समझा जाए ये आठवां गर्भ है, ये विष्णु है, ऐसा आविष्ट। और इस अविष्टता के कारण दिन रात अविष्ट रहता था
जब से आकाशवाणी सुनी तब से ही
तब से। तो इसलिए अविष्टता के कारण उसकी गति हुई, परम गति नहीं, गति हुई आवेश। उसी प्रकार से कोई काम के द्वारा कृष्ण में आविष्ट हो जाए तो क्यों नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को इस बात को कह रहे हैं और ये कहते हैं नारद जी ये मेरी ये निश्चित राय है कि भक्ति से जो द्वेष जो अविष्टता नहीं होती वो द्वेष और भय में क्रोध में ये हो जाता है या काम में भी हो सकता है। काम एक ऐसी चीज है जैसे भाई कंट्रोल करना बड़ा भारी कठिन है तो उसमें आविष्ट हो सकता है। इसलिए भक्ति में इतना आवेश नहीं होगा। क्यों? अभी हम लोग बहिर्मुख हैं, होना बड़ा कठिन है भक्ति में। भक्ति में कब आवेश होगा? जब भक्ति अनर्थ मुक्त होकर के साधक की और निष्ठा आएगी, निष्ठा से रुचि आएगी और रुचि से जब आसक्ति आएगी तब अब धीरे 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 आविष्टता आने लगी और भावावस्था में अत्यंत अधिक आविष्टता आ जाएगी। जब तक वो भावावस्था में रति में नहीं पहुंचेगी स्थायी भाव इत्यादि नहीं होगा, भक्ति में ये नहीं होगा। किंतु है यही एकमात्र मार्ग, भय क्रोध द्वेष ये साधन नहीं है, ये सब साधन नहीं है। साधन क्या है? भक्ति का ही साधन। और एक जोड़ दिया है उसमें स्नेह संबंध, तो स्नेह युक्त संबंध इसलिए छह रखा, नहीं तो पांच ही है। तब तब कमात देशात भयात स्नेहात भय, देखो ले आओ तो स्नेह युक्त संबंध, संबंध से ही नहीं होगा। ये दुर्योधन भी कृष्ण का संबंधी है किंतु स्नेह नहीं है इसलिए उसको भक्ति लाइन में नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों को विचार करना है क्या अनुकूल और प्रतिकूल। अब इन चीजों को लेकर के हम पुतना से लेकर के और इधर में और उधर यशोदा मैया और ब्रजवासियों का विचार करेंगे। साधक लोगों को इस पर विचार करके लेना कर करके चलना चाहिए। पुतना पुत न, भक्ति का साधन करने के लिए हमें पवित्र होना होगा। पवित्रता किसको कहते हैं? भक्ति के विरुद्ध जितनी भी बातें हैं उन सबको ग्रहण करना ये अपवित्रता है। पूतना में ये सारी चीजें हैं। इसी तरह से हम साधक हम विचार करेंगे ऐशात भयात स्नेहात यथा भक्तरेश्वरे मन आवेश तदंग हित्वा बवस्तद गतिम गता कामात गोप्यो भयात कंसो देशात चैद्याद्यो निपा संबंधात विष्णय स्नेहात जुजन भक्त्या वयन विभो। सभी साधक कर दिए अमात ये तो बतलाया गोप्यो, यह गोपियों को जो कहा गया यह सिद्ध और साधक दोनों हैं? टीका में दिया है ना, गोपियों को कने से राधा और ललिता विशाखा को मत लो, किसको लो? साधन सिद्धा। अभी जो साधन में जो गोपियों के लिए जो साधन किया है, दंडकारण्य वासी इत्यादि, ये सब करो। अथवा वहां तक भी लेने पे कोई हर्ज नहीं है, प्रकट लीला में जो कि कात्यायनी का व्रत जिन्होंने किया था उसमें अंतिम दिन सिद्धा आई थी, और उसके पहले तक वो सब साधक थी, अभी उनमें दोष था, वहां तक ले सकते हैं। और उसके पूर्व जन्म में जैसे श्रुति चरी है, उपनिषद चरी है, दंडकारण्यवासी हैं, स्वर्ण सीता और जनकपुर की जो ये हैं, इनको ले लो साधक, इन साधक गोपी। फिर वो ब्रज में उन्होंने जन्म लिया ब्रज में, और थोड़ा सा जो काशा था वो कात्यायनी व्रत इत्यादि के द्वारा नित्य सिद्धाओं के संघ के द्वारा दूर हुआ। भयात कंसो द्वेषाच्छेद्यादयो निप संबंधात विष्णय स्नेहात जुजन भक्ता वयम विभो, संबंधात विष्णय अस्नेहात युजन, युजन माने तो ये छह हो जाएगा, पहले में वो पांच है इसलिए इसको पांच करना है, तो कैसे होगा? संबंधात स्नेहात विष्णया एंग जीवन, संबंध संबंध के द्वारा, स्नेह पूर्वक संबंध के द्वारा ऐसा लिया जाएगा, स्नेह पूर्वक जो संबंध है उसके द्वारा विष्णय वंश वाले उग्रसेन इत्यादि, उद्धव इत्यादि, अथवा आप लोग पांडव लोग, पांडवों के लिए स्नेह था, स्नेह पूर्वक संबंध था। अब इसको बतला रहे हैं, अब पुतना को लीजिए, और उधर यशोदा जी का, एक ही कृष्ण है, पुतना आई, उस समय में यशोदा जी कैसी थी और ये कैसी, इनका व्यवहार कैसा, उनका व्यवहार कैसा। जसोदा जी परम आविष्ट हैं कृष्ण में, परमाविष्टता इष्टे स्वार सखी राग, जसोदा जी का इष्ट में आतत पुत्र में अत्यंत उच्च कोटि का वात्सल्य और अत्यंत आवेश रसोई बना रही हैं, दृष्टि कहां है? भले ही तवे पर रसोई जल जाए किंतु दृष्टि कहां है? वो उद्यमी कहां क्या कर रहा है? उद्यमी क्या कर रहा है? किसी सर्प को पकड़ लिया, किसी को कर लिया, या कहां जा रहा है, क्या कर रहा है? इस तरह से सब समय उनकी दृष्टि, कुछ भी काम करती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, दोनों बहनें रुक्मिणी रोहिणी और यशोदा जी। यशोदा जी ने कहा जी बहन तुम एक बात करो, जब मैं इधर काम करूं तो उधर में उन दोनों को देखो, और तुम यदि रसोई बनाओ तो दम। रोहिणी ने कहा जब मैं घर का काम निबट लूंगा, उनसे निबट नहीं सकती, वो दोनों बड़े चंट हैं और इतने चंचल हैं कि मुझसे वो होता नहीं। अच्छा, इसलिए कभी यशोदा जी कभी रोहिणी मैया उन दोनों को लालन पालन करती हैं, किंतु चित्त कहां रहेगा? कुछ भी काम कर रही हैं, मन रहेगा वहां, ऐसी आविष्ट है। पूतना आई, इतनी आविष्ट है कि उसको मना नहीं कर सकी, मना कर सका, कह जी मैया, मैं मैया नहीं हूं, मैया कौन है? उसको देख करके अपने अनुराग को उन्होंने छोटा मान लिया, बहुत थोड़ा माना अनुराग, कृष्ण में मेरा अनुराग नहीं है। यही तो अनुराग का लक्षण क्या है, प्रेम का क्या है? बंगला में जिसमें प्रेम है वो ये समझेगा, उसका ये प्रेमी का लक्षण है, हमें प्रेम का गंध नहीं है। अच्छा, सबसे प्रेम कृष्ण का, कृष्ण के प्रति किसका है? राधिका का। वो सबसे अधिक समझती हैं कि कृष्ण में हमारा तनिक अनुराग नाम का कोई चीज नहीं है। अच्छा, साधक में क्या होगा? कनिष्ठ में उसमें अनुराग तो है नहीं, इसलिए समझेगा कि विश्व में मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। कृष्ण में जितनी हमारी भक्ति है किसी को नहीं है। There are two things, those who have prem, they will think highest prem in those, they will think that I have not a very little smell of gandha in me. Are those who are kanishta, no anurag, only they are doing some badi bhakti, archan or anything, they will think that, oh, I am superior in love, I am serving Krishna most of all, I am highest of. यही एक प्रेम का लक्षण, जिसमें देखना जी ऐसा कोई डिग मार रहा हो तो समझना जी अभी कनिष्ठ है। और जो ये कहता है सचमुच में दूसरों को धोखा देने के लिए नहीं, कभी कभी हम झूठ मूठ की दीनता बना करके ऐसा कहते हैं, वो ठीक नहीं। यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति सच्चा अनुराग, इसलिए वो कह रही हैं जैसे अरे ये देवी के हृदय में इनके प्रति जो अनुराग है, कैसे प्रेम के साथ में झट गोदी ले लिया और सलाह करके इसे दूध देने के लिए जा रही है, इसलिए ठगी सी रह गई। ये अनुराग का लक्षण है। उसने क्या देखा, हम ऐसी छलना करेंगे ये समझे जगत जो मैं सबसे अधिक प्यार कर रही हूं, ये साधक का है नहीं। वो भी समझता है कि हमारा कृष्ण में अनुराग नहीं है, साधक कनिष्ठ, क्योंकि तो भी ये दिखलाना चाहता है कि कृष्ण में हमारा सबसे अनुराग है, मैं साधन कर रहा हूं सबसे श्रेष्ठ। वो क्या करते हैं, मैं जैसे कोई कपड़ा नहीं पहन करके निर्जला एकादशी करता हूं और गोवर्धन गोजीराज की दंडवत परिक्रमा करता हूं, ऐसा कोई है ब्रजमंडल में जो कर सके? कपड़ा नहीं पहनता, चप्पल नहीं लगाता, ये समझेगा इले सबसे बड़ा मैं साधक हूं। ये लोग दंडवती परिक्रमा नहीं कर सकते। मैं 3 लाख हरिनाम करता हूं, कर सकते हैं कोई? 3 लाख करता नहीं है, धोखा देता है अपने को दूसरों को, तभी कहेगा मैं 3 लाख करने वाला हरिनाम। और हम ऐसा कोई ब्रज में है जो करता है? गौड़ीय वेदांत समिति में तो कोई नहीं है, ऐसा कहेगा। सो कनिष्ठ आर थिंकिंग लाइक दिस, आई एम बेस्ट, आई कैन अंडरस्टैंड मोर देन माई गुरुदेव, गुरुदेव कैनॉट थिंक लाइक मी, व्हाट आई एम थिंकिंग, आई एम बेस्ट ऑफ ऑल, सुपीरियर टू ऑल। कनिष्ठ में ये एक ऐसी धारणा रहती है, वो गुरुदेव का भी विचार करता है, वैष्णव का, सब वैष्णव का विचार करता है और अपने कुछ नहीं। वी शुड नॉट ट्राई टू डू दिस। कृष्ण का भी विचार करेगा, कृष्ण झूठ बोलता था, चोरी करता था, वो ऐसा विचार कनिष्ठ करने लग जाएगा। इसलिए रामचंद्र जी अच्छे हैं, कृष्ण राम कृष्ण से रामचंद्र जी की भक्ति बहुत ऊंची है, वो सदाचार संपन्न धार्मिक परम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ऐसा समझ। और उसे भी शंकर जी की आराधना और ऊंची है, गणेश जी तो और महान है, ऐसे सब विचार कर, ऐसा विचार मत करो, डोंट ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग, अदरवाइज यू विल बी चीटेड। हाँ, तो क्या विचार कर रहा था? तो यशोदा जी और पुतना का विचार, तो पुतना अपने को ऐसा समझ रही है और सचमुच में ऐसा प्यार किया है, किसके लिए? दूसरों को दिखलाने के लिए। भक्त में ये दोष होता है, साधक में, घर में हरिनाम नहीं करेगा और बाहर में क्या करेगा, लटका करके और हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, जब देखा जे चले गए तो कोई बात, he will not dance alone when chanting, but he will dance when oh thousands of persons are there and then he will dance like this, jumping 4-5 feet upside। ये सब भक्ति के लक्षण, ये दिखलाने के लिए, पूतना दिखलाना चाहती है, किसको दिखला रही है? जो परम अनुरागवती है जो बात्सल्य की सीमा है उसको ये दिखला रही है और वो ठगी रह गई। क्यों ठगी रह गई, कारण क्या है, कारण क्या है, क्यों ठग गई? भक्तों को कोई ठग सकता है कि नहीं? किंतु यहां पर ठग गई भाई, ठग क्यों गई? योग माया कृष्ण की लीला को उद्दीपित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और उनको भी ठगने के लिए, जो भक्त भी नहीं जानते भगवान भी नहीं जानते। जोगमाया के प्रभाव से भक्त भी अपना वो जो वो सर्वज्ञ हैं वो कुछ कर सकते हैं वो भी नहीं जानता, असहाय समझते हैं, और भगवान भी अपने को छोटा सा एकदम अज्ञानी समझ लेते हैं। ये जोगमाया का कार्य है। इसलिए यशोदा मैया ऐसे सोच रही और पूतना वैसा सोच रही है, किंतु करते करते वो दिखलाने में ही ऐसे आविष्ट हो गई, जो मारी गई तो उसकी सदगति हो गई। साधक को इन चीजों से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? ये जो पुतना का जो व्यवहार उसे बचे, और जो यशोदा जी का व्यवहार ग्रहण करे एक साथ में दोनों, तब ये साधक भक्त हैं। दोनों चीजें हो, जितने परिमाण में यशोदा जी का भाव हृदय में आएगा पुतना का भाव उतने परिमाण में दूर होगा, अन्यथा दूसरा से नहीं। भक्ति नहीं आई, वैराग्य हो जाएंगे, सारे दोष दूर हो जाएंगे, ये कभी हो नहीं सकता है। इसलिए पुतना के इन भावों को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यशोदा जी के भाव को ग्रहण करना। सब चीज को आप विश्लेषण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी पुरी धाम में अपने भक्तों को उपदेश कुछ दिए आविष्ट होकर के, और उसको स्वरूप दामोदर राय रामानंद इत्यादि भक्तों ने सुना, हमारे इन्होंने गोविंद इत्यादि ने सुना। जब परम भाव आविष्ट हो जाते दूसरों को उपदेश देते, और उनको सुन करके रूप गोस्वामी जी उन लोगों के मुख से सुने प्रतिकूल भावों को और अनुकूल भावों को, और सुन करके हृदयंगम किया और हृदयंगम करके उपदेशामृत में लिखा। अनुकूल कैसे ग्रहण करेंगे, प्रतिकूल कैसे दूर करेंगे, इसलिए उसका नाम है उपदेशामृतम। इसलिए उपदेशामृत में अमृत कोई चीज है ना, अमृत को पीने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, साधन हैं, उनको ग्रहण करना पड़ेगा और उस अमृत को ले। अमृत जितने परिमाण में हम लेंगे उतने ही परिमाण में हमारे जो दुर्गुण इत्यादि जो कुछ दोष थे वो सब दूर होंगे। अमृत आया नहीं कैसे हो जाएगा? इसलिए उस उपदेश के द्वारा बहुत सी बातें उन्होंने लिखी हैं। राधा रमन के कोई गोस्वामी जी, राधा रमन ही नाम, उनके चरणों में रह करके उपदेश रूप गोस्वामी के सुन करके उस पर विचार किया, और उन्होंने उसकी टीका लिखी, और उसके बाद में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उस पर टीका लिखी, और प्रभुपाद जी ने उस पर अनुवृत्ति टीका उस पर। इन सब समझने के लिए इन सब की आवश्यकता है। तो पहला क्या है? बाचो बेगम मनसा क्रोध बेगम जिह्वा उद्रोपस्त बेगम एतान बेगान जब विषहित धीर सर्वम पृथ्वी सशिष्य। यदि कल्याण चाहते हो, उस अमृत को पीना चाहते हो, तो भाई पहला ये करो। पूतना में ये सारे दुर्गुण हैं, सारे दुर्गुण साधक की प्रथम अवस्था में बहिर्मुखता से जो आ रहे हैं, कुछ संतों के शुद्ध भक्तों के वैष्णवों से कुछ सुना, और सुन करके कृष्ण के प्रति थोड़ी सी सेवा की वासना हृदय में आई, यहां तक तो आई, किंतु दुर्गुण उनके जितने थे, बहिर्मुखता इत्यादि सभी उसमें ही विद्यमान है। कुछ उन्मुखता बस यही आई है कि अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए, ये कैसे जीव सुखी रह सकता है बिना कृष्ण भजन के, उनकी सेवा से नहीं होगा, इतना तो आया है। या पूर्व जन्म का संस्कार वैसा हो तो कृष्ण के प्रति कुछ रुचि इत्यादि आ सकती है, किंतु उसमें दुर्गुण भी सभी हैं। बहिर्मुखता है ये जितने हैं, मन वेग, क्रोध वेग, जीवा वेग, उदर वेग, बात वेग, उपस्थ वेग इत्यादि सभी हैं। इसलिए सेवा की वासना कैसे पुष्ट होगी, इसलिए महाप्रभु ने जो विचारधारा दिखलाया रूप गोस्वामी को, उन्होंने उसमें लिखा और उसको विचार किया। इसके लिए बतला रहे हैं ये वेग जो है, कितना बजा, 6:30, ये वेग 6 है। बात वेग, बाचो वेगम, मनसः, क्रोध, जीवा, उदर, उपस्थ, 6 में इनके 3 विभाग हैं। कौन कौन? कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक कौन कौन है बतलाओ? बस उमा बतला सकती है, ये फटफट करती है, बतलाओ। वाह, और बोलो। जीवा वेग, उदर वेग और उपस्थ, ये 3 कायिक हैं शरीर से। जीवा वेग माने क्या? जीवा का वेग, दीवा के वेग भी 2 प्रकार के हैं ना, एक तो रसास्वादन करना जीवा से, और एक बोली के ऊपर में कंट्रोल नहीं होना। तो इसलिए जो रसास्वादन करने की लालसा है, ये जीवा वेग आया कायिक में ना, और उदर का वेग, खाएंगे खूब, ये उदर का वेग, और उपस्थ, स्त्री पुरुष की संग की लालसा, ये उपस्थ वेग। ये 3 कायिक वेग है। ग्रहण करना बड़ा भारी कठिन है, बल्कि हम उसके अनुकूल काम करते हैं कभी कभी। ये स्त्री पुरुष दोनों में भी, दोनों में ही है। स्त्रियों में अभिव्यक्ति जरा लज्जा से नहीं कम होती, पुरुष में इसमें हो जाता है। खूब सावधान रहे, आने तो ये चौपट कर देगा एकदम। विशेष करके ये चीज को समझो, जो मैंने दीक्षा और हरिनाम के समय में गुरु को जो हृदय को अर्पण कर दिया है, और उस अर्पित की भी चीज को जो दे दिया है, और उसको फिर हम दूसरे को दे देते हैं, तो ये कितना बड़ा भारी धोखा और अपराध है। खबरदार ऐसा मत करो, इसको याद रखो। गुरु जी को दे दिया, ये गुरु जी मैं आपकी जूती हो गया, और फिर उसे लेकर के दूसरों को दे देते हैं, मैं तुम्हारे पैरों की जूती हो गया, ऐसा मत करो। अच्छा, मन का वेग 2, क्रोध वेग, मन का वेग और क्रोध का वेग, ये दोनों। मन के द्वारा भगवत इतर वस्तुओं का चिंतन करना और क्रोध, ये 2 है मानसिक। और वाच वेग, ये वाचिक वेग। कौन सा वाचिक वेग? अंड बंड जो कुछ आए बिना कंट्रोल का, उसको बिना लाइसेंस के जो इच्छा है इसको कह दिया। भगवत कथा से इतर जितनी भी बातें हैं, ये सब क्या है? वाचो वेग है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनको कैसे दमन करेंगे, इन सब के लिए विचार किया है। हम लोग भजन करते हैं किंतु उससे विचार, जो कभी इच्छा होती है गुरु के संबंध में भी बोल देते हैं। If you are going to sadhak and we have taken diksha and mantra and everything and doing chanting, remember, but yet we have no control on tongue or mind or anything. अरे यदि तुम ही विचार करके उनका देखेगा तो वही तुम ही गुरु हो गया, वो चेला हो गया गुरु। एक समय प्रभुपाद जी बरांडे में टहल रहे, प्रभुपाद माने भक्त सिद्धांत सरस्वती और पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, उनसे बोले कि ये आपके जितने अभी सन्यासी लोग हैं वो लोग कह रहे हैं आप लोग भिक्षा नहीं जाएंगे। और भक्तिविलास तीर्थ महाराज उस समय में कुंज बिहारी थे मैनेजर, उनको एक पैसा नहीं देंगे। वो अपने लड़के को, अपने बिस्त्री को या दूसरों को रुपया भेजते हैं, इसलिए हम लोग इसके लिए जाते हैं भिक्षा करने के लिए, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे। और देना बंद कर दिया सब लोगों ने मिल करके। और प्रभुपाद जी को यह बात बतलाने के लिए, प्रभुपाद जी जान करके भी नहीं बोल रहे, सभी कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, किंतु नहीं, जो जानेगा नहीं तो वो गुरु कैसे समझते हैं, किंतु किसी कारण से उसको सुधारने का अवकाश दे करके नहीं बोल रहे। जब श्रीधर महाराज ने कहा जी तुम्हारा भी सिर, तुम्हारो सिर की माथा कपाल पुड़ी छे, उदय तो पुड़ी छे, तुम्हारे कपाल पुड़ लो क्यों, तो तुम ही लोग गुरु क्यों नहीं हो गया, हमको गुरु क्यों बनाए, परमार्थ बड़ा है ना अर्थ बड़ा है, तुम परमार्थ के लिए अर्थ को छोड़ करके आए, फिर अर्थ की चिंता क्यों कर रहा है। एक काम को मैनेजर के रूप में उसको ये विषय कर रहा है, विषय इत्यादि हमारी रक्षा कर रहा है, उसको हमने अर्थ दे दिया कुछ थोड़ा सा, और उसके द्वारा परमार्थ दूसरों को करा रहा हूं, तुम लोगों का समय में बचा रहा हूं, तुम लोग परमार्थ में बुद्धि दो, तो तुम्हारे देश सती सती कपाल पूरे छे, अर्थ जन अर्थ छड़े दिए हुए आबार अर्थ मध्य आछे, अर्थ को छोड़ करके भी अर्थ में लगा हुआ है, हमारी बात को तुम लोग समझा नहीं। अभी हम भी कह रहे हैं किंतु लोग समझेंगे कि नहीं, कितने लोग नहीं समझेंगे। किसी को अर्थ दिया जाए, किसी को परमार्थ, दोनों में कौन बड़ा है, तो हम किसी को परमार्थ देने प्रभुपाद जी कर रहे हैं, और किसी को अर्थ, तो अर्थ देने वाला तो बहुत नीचा है, तुम तो उसके लिए क्यों मर रहा। किसी को हमने एक फूटी हुई कौड़ी दी और किसी को हमने चिंतामणि दी, तो तुम चिंतामणि छोड़ करके उस कौड़ी फूटी हुई के लिए तू रो रहा है, जैसे हमको गुरुजी ने वो नहीं दिया और उसको दे रहे हैं फूटी कौड़ी, तुम इसलिए क्यों नहीं रोता है, जैसे उसको फूटी कौड़ी क्यों दे रहे हैं, हमारे जैसा उसको क्यों नहीं। तब तो एक बात थी, हम साधक लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, इन चीजों को समझना चाहिए। जीवा द्वारा शब्द उच्चारण और स्वादन, यही दूटी क्रिया है, एक रसास्वादन जीवा के द्वारा और एक शब्द उच्चारण, दोनों कंट्रोल होना चाहिए। एक आ गया वाचो वेग में और दूसरा आ गया कायिक में, कायिक में आ गया। वाक वेग, वाक उच्चारणकारी हम लोग भूल जाते हैं, वाक को कंट्रोल करके बोलो, कृष्ण सेवा के लिए, गुरु सेवा के लिए, वैष्णव सेवा के लिए जो बातचीत है वो तो भक्ति है, वो बात बेग नहीं है। एक आदमी निरंतर हरि कथा कर रहा है निस्वार्थ रूप में, वो बात बेग नहीं है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए, जागतिक स्वार्थ के लिए कृष्ण कथा को छोड़ करके संसारिक बातें कर रहे हैं, ये बाचो बेग है। किंतु गुरु और वैष्णव उन्नत जो हैं कहेंगे जे झाड़ू लगाओ, ये तो विषय की बात है, किंतु ये हो जाएगी सेवा की परम उत्कृष्टता, इसको भी समझना चाहिए। उनका प्रत्येक व्यवहार और उनकी प्रत्येक कथा ही कृष्ण की सेवा है, इसको भी समझो। हम साधक लोग, कभी कनिष्ठ लोग, हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। इसी को दास गोस्वामी ने असद वार्ता कहा है, यह भक्ति का अत्यंत घोर विरोधी है, असद वार्ता वेश्या विशिज मल्ति सर्वस्व हरिणी, किसी कभी भी ऐसी बात, इसी से झगड़ा हो जाता है, इसी से वैष्णव की निंदा हो जाती है, कभी कभी गुरुजी की भी निंदा हो जाती है, इसलिए सावधान इसके द्वारा हो। हम कल से दोनों बातों को विचार करेंगे, यशोदा मैया का अनुराग कैसे उस लीला से बढ़ा और किस प्रकार से पूतना का जो बाहरी भाव है उसको हटाना चाहिए, कैसे होगा, इसलिए अनुकूल ग्रहण प्रतिकूल त्याग आज यहीं तक रहे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो।